ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हम सबको यही परम लक्ष्य दिया है कि हम हर एक ब्राह्मण जीवन से अनेक आत्माओं को बाप की सूरत और सीरत स्पष्ट करें। और गुजरात ने तो इस साल को विशेष दिव्यता संपन्न वर्ष मनाने का एक निर्णय लिया है, तो अब समय अनुसार अगर देखा जाए तो वास्तव में यही स्थिति इतनी पावरफुल रूप से बनानी है ताकि हर एक को साक्षात्कार हो सके, दिव्य दर्शनीय मूर्तों का। जिस तरह से आदि में ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हर एक को होता था और उस साक्षात्कार के माध्यम से ही यज्ञ स्थापना हुई, ऐसे बाबा हमेशा कहते आदि सो अंत। बीच के समय में हमारी दादियों के द्वारा साक्षात्कार कईयों को हुआ, कई विदेशी भाई बहने ज्ञान में उसी आधार पर आए, किसी को प्रकाश मणि दादी का साक्षात्कार हुआ, किसी को गुलजार दादी का साक्षात्कार हुआ, तो किसी को जानकी दादी का साक्षात्कार हुआ। और उन आत्माओं ने जैसे यही प्रेरणा प्राप्त की कि सेंटर जाओ, और इस तरह से कई विदेश के सेंटर अपने खुले जब ये दादियों का साक्षात्कार हुआ, तो आदि में हुआ, मध्य में हुआ, अभी अंत में भी हम सभी आत्माओं के द्वारा दुनिया की आत्माओं को यही साक्षात्कार हो, अपने दिव्य मूर्त के द्वारा, जिससे वो आत्माएं भी अंत में राहत प्राप्त करे, उन रूहों को राहत मिले, या उनको भी किसी न किसी रूप से परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त हो जाए, चाहे त्रेता के अंत तक भी कुछ न कुछ अंशली प्राप्त हो जाए, तो ऐसे बाबा कहे ड्रामा में ये पाठ चलना है। और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। कल भी आप सभी को हमारी आदरणीय गीता दीदी ने दिव्यता संपन्न जीवन क्या होती है, उन गुणों को, कलाओं को और मर्यादाओं को स्पष्ट किया, स्थिति को स्पष्ट किया। ठीक इसी तरह दिव्य दर्शनीय मूर्त बनना है तो मूर्त में क्या होना चाहिए। बाबा ने पहले भी कई बार हम बच्चों से कहा कि बाबा अप्रत्यक्षता का पर्दा उठाए, क्या मूर्तियां तैयार है, ये बाबा ने कई बार पूछा है। लेकिन वास्तव में बाबा कहे अब समय पर्दा उठाएगा। बाबा ने तो उस वक्त पूछा, लेकिन जब बाबा कहते बच्चे मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, जब बाबा अपनी मूर्तियों को देखता है तो अभी तक अगर संपन्न नहीं है तो बाबा क्या समझते, नहीं थोड़ा देर और रहम दिल है ना। लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे अब ड्रामा पर्दा उठाएगा, उस समय बाबा भी कुछ नहीं कर सकेगा। और उस समय अगर मूर्तियां तैयार नहीं होगी तो क्या होगा ना? तो क्या होगा, वो खंडित मूर्ति गिनी जाएगी। और खंडित मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती है, मंदिर में रखने के योग्य नहीं होती है, वो म्यूजियम में रखने योग्य होती है। तो हमें म्यूजियम वाली मूर्तियां बनना है या मंदिर वाली मूर्तियां बनना है? मंदिर वाली मूर्तियां बनना है ना। तो जब मंदिर वाली मूर्तियां बनना है तो अपने आप को अभी फाइनल पॉलिशिंग ही करना होगा। अब अपने आप को इस तरह से संपूर्ण रीति से तैयार कर देना होगा। अब तैयारी में क्या क्या चाहिए? ऐसे दिव्य दर्शनीय मुहूर्त बन करके सबको आशीर्वाद दे या परमात्मा की सूरत और सीरत स्पष्ट कर सके, तो ऐसे हमारे में क्या होना चाहिए? तो सोचो, कोई भी मंदिर की मूर्ति को सामने ले आओ, क्योंकि जब बाबा कहते हैं कि जब आप पांच स्वरूप का अभ्यास करते हो तो द्वापर युग में क्या देखते हो? अपने को भी पूज्य स्वरूप में देखते हो, तो पूज्य स्वरूप हम सभी का है, हम सभी वो दर्शनीय मूर्त है। क्योंकि बाबा एक एक बच्चे के द्वारा दुनिया को ये अनुभव कराएगा कि ये मेरे बच्चे हैं, देखो, तभी तो लोग भगवान की महिमा गाएंगे कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, तुमने कैसे कैसे को क्या बना दिया। तो लोगों ने हमारा पहला स्वरूप भी देखा था, और जब उनको अंतिम समय साक्षात्कार होगा और हमारा दिव्य दर्शनीय स्वरूप देखेंगे तभी तो भगवान की महिमा गाएंगे कि हो प्रभु तेरी लीला परम्पार है, तुमने एक एक को कैसे कैसे को क्या क्या बना दिया, तभी तो कहेंगे ना। तो हम सबके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, कोई एक दो के द्वारा नहीं होनी है। और जब हम सबके द्वारा ये प्रत्यक्षता होगी तो जो जो संपन्न मूर्ति होगी उस वक्त, संपूर्ण मूर्तियां होगी जिनका दर्शन बाबा कराएगा, खंडित मूर्तियों का तो दर्शन नहीं कराएगा, लेकिन संपूर्ण मूर्तियों का दर्शन कराएगा, तभी तो वो पूज्य स्वरूप का वर्षा, ये इष्ट देवों के पूज्य देवताएं, वो वर्षा बाबा से हम सभी को प्राप्त होगा। इसीलिए हम सभी के द्वारा ये कार्य संपन्न होना है। तो कोई भी मूर्ति को सामने ले आओ मंदिर की, क्या दिखाई देता है? सबसे पहले तो कोई भी मूर्तियां देखते हैं तो श्रृंगारी हुई होती है ना, इतना श्रृंगार किया हुआ होता है, और वो श्रृंगारी हुई मूर्त ऐसी होती है, तभी तो लोग एक झलक पाने के लिए तड़पते हैं। मंदिरों में जाकर के देखो, जो वीआईपी गेट से जाते हैं उनको दर्शन होता है, वो तो पूर्ण दर्शन कर लेते, लेकिन जो लाइनों में होते हैं, क्यू में होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ करके देखने का प्रयास करते हैं कि एक झलक मिल जाए, कुछ क्षण के लिए भी हमें दर्शन प्राप्त हो जाए। तो श्रृंगारी हुई होती है पहले तो मूर्ति, और लोग भी भक्त भी इतने श्रद्धा से श्रृंगार उनको दान करते मंदिर वालों को, ये हमारा श्रृंगार आज होना चाहिए। कोई हीरो का श्रृंगार देते हैं, कोई पूर्ण सोने का श्रृंगार देते हैं, कोई किसका श्रृंगार देते हैं, और वो सारी मूर्तियों को जब श्रृंगारते हैं, वस्त्र देते हैं उस अनुसार, और वो श्रृंगार जब लगाया जाता है तो झलक पाने के लिए भी कई मंदिरों में देखा गया, जैसे नाथद्वारे में और इस तरफ जहाँ ब्रह्मा बाबा के मंदिर है वहाँ पर रोज के श्रृंगार बदलते हैं, और रोज के श्रृंगार देखने के लिए कई लोग खास जाते हैं कि आज कौन सा श्रृंगार किया। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना श्रृंगार दिया है। बाबा की एक मुरली याद आती है कि बाबा कहे तुम बच्चों को भी बाबा ने पूर्ण सेट दिए हैं, कभी आनंद का श्रृंगार तो कभी अति इंद्रिय सुख का श्रृंगार तो कभी शांति का श्रृंगार, एक एक इंद्रिया या जिसको कहा जाए वो 16 श्रृंगार शांति के हो, जहाँ कांस्टेंट जैसे शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हो, नैनों से मुख से स्वरूप से रहम दिल हो करके, जैसे दिल से माना एक एक श्रृंगार जो है सेट के रूप में जो हमें प्राप्त है वो उस चीज का अनुभव कराए। जब आनंद का श्रृंगार पहनो तो वो आनंद रस का अनुभव कराए। भक्ति में गायन है, किसी कृष्ण के महारास का गायन है कि आनंद का अनुभव कराता था, इसीलिए आज भी लोग झूमते रास करते समय थकावट का अनुभव नहीं करते। गुजरात में जब गरबा करते तो कोई नवरात्रि में थकावट का अनुभव करता है? कोई नहीं करता है। बूढ़े हो कोई भी हो, मोटे हो पतले हो कैसे भी हो, लेकिन हर कोई उस रास के स्थिति में मग्न हो जाते है कि नहीं है? तो कहने का भावार्थ बाबा ने हम बच्चों को कई श्रृंगारों के सेट दिए। कभी प्रसन्नता का श्रृंगार धारण करे, कभी संतुष्टता का श्रृंगार धारण करे, कभी किस गुण का श्रृंगार धारण करे, कभी किस गुण का श्रृंगार धारण करे। तो श्रृंगारी हुई मूरत, ये नहीं कि कोई कोई श्रृंगार छूट जाता हो हमारा, नहीं, सारे श्रृंगार धारण किए हुए हो, क्योंकि जो श्रृंगारी हुई मूरत होगी वही दर्शनीय मूरत होगी। दूसरी बात, और क्या दिखाई देता है मूर्ति के अंदर? संपन्नता, प्राप्ति स्वरूप उनका स्वरूप होता है, प्राप्ति स्वरूप संपन्न स्वरूप में वो दिखाए गए हैं। उनके श्रृंगार से ही पता चलता है कि कितने संपन्नता थी, है ना? तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि दिव्य दर्शनीय मूरत वही है जो प्राप्तियों से संपन्न स्वरूप में है, तभी दूसरों को प्राप्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो संपन्न स्वरूप जब कहते हैं तो संपन्नता का मतलब क्या है? संपन्नता अर्थात, कुछ समय पहले भी बेस सीजन की बाबा की जो मुरलियां हम सभी ने सुनी, उसमें एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे अब समय अनुसार संपन्न बनो। किसमें संपन्न बनना है? तो बाबा ने कहा अपने जमा के खाते संपन्न हो, तभी तो प्राप्ति का अनुभव करा सकेंगे। तो जमा का खाता संपन्न कैसे होगा, उसकी विधि बाबा ने बताई थी कि बच्चे कई बार अपना चार्ज चेक करते हैं कि मैंने आज दुख किसी को नहीं दिया, आज मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, आज मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, ये चार्ट में लिखते हैं, लेकिन उससे प्राप्ति नहीं है, बहुत गैर पहली बात बाबा ने बताई थी कि उससे प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति किसमें है कि मैंने सुख कितनों को दिया, ये हमारा जमा का खाता बनाता है। जो मैंने सुख दिया उससे मेरा जमा का खाता बन गया, उतना जमा हो गया। तो जमा के खाते में संपन्न बनना है तो क्या नहीं किया उसको नहीं लिखना है। वो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया बहुत अच्छी बात, ने किसी को दुख नहीं दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे प्राप्ति नहीं है, उससे जमा नहीं होता है। जमा तब होता है कि आपने क्या किया। मैंने इतनों को सहयोग दिया, मैंने इतनों को सुख दिया, मैं इतना श्रेष्ठ कर्म किया। जब ये लिखते हैं, ये अपने आप को देखते हैं कि आज सारे दिन में मेरे द्वारा कितनों को क्या क्या प्राप्त हुआ, ये संपन्नता की ओर। क्योंकि जितना देंगे उतना बढ़ेगा, अपना खाता बढ़ता जाएगा, तब संपन्नता हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि दर्शनीय मूर्त वही है जो प्राप्ति संपन्न स्वरूप है, और प्राप्ति संपन्न स्वरूप माना अपना जमा का खाता इतना हो जो अनेकों को अंत समय में भी हम दे सके। वो मूर्ति भी देती है कंटिन्यू, तो वैसे हम भी कंटिन्यू दे सके, तो उसको कहा जाता है कि हाँ इतना जमा का खाता भरपूर है जो कोई भी प्राप्त कर। क्योंकि जितना हम देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कहा ना, ये खजाना ऐसा है बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो बांटते जाए बढ़ाता जाए। तीसरी बात कि दिव्यता, दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए दिव्यता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलने चाहिए। वो दिव्यता के वाइब्रेशन कैसे फैलेंगे? कल भी गीता बहन ने ये बात बहुत अच्छी सुनाई है आपको कि दिव्यता किसको कहा जाता है, कि जहाँ दिव्य गुण प्लस पवित्रता हो, दिव्य गुण प्लस पवित्रता दोनों जब मिल जाती है तो दिव्यता हो जाती है। तो वो स्वरूप में दिव्यता जो लानी है, हमें अपने स्वरूप में जो दिव्यता लानी है, दिव्य गुण और पवित्रता, ये प्रत्यक्ष स्वरूप में दिखाई दे। जहां बाबा ने बहुत सुंदर बात आगे कही थी, जहां बोल चाल और भाषा में अलौकिकता हो और हर कर्म चरित्र बन जाए, ये दिव्यता संपन्न स्वरूप है। तो बोल चाल भाषा में अलौकिकता अर्थात व्यर्थ या स्थूलता या साधारणता जिसमें न हो, उसको कहेंगे दिव्यता है। इसके एक एक बोल जैसे अमूल्य महसूस हो, जिसको सुनने के लिए कोई ध्यान से सुनते हैं, उसको कहते हैं दिव्यता संपन्न या अलौकिकता है उसके वचनों में। अगर बार बार हम साधारणता में आते हैं तो वो साधारणता हमारी दिव्यता को खत्म कर देता है। दिव्यता माना साधारणता से ऊपर। जितना दिव्यता संपन्न वो वाइब्रेशंस चारों ओर निकलेंगे, उतना चारों ओर वातावरण के अंदर भी वो व्यर्थ को समाप्त करने की शक्ति रखती है।
शिल्पिता
तो दिव्य दर्शनीय मूरत अर्थात दिव्यता संपन्न। और दिव्यता का अर्थ हमने देखा दिव्य गुण और पवित्रता का कॉम्बिनेशन, उसके साथ साथ जो बाबा ने कहा चेहरा और चलन में वो स्पष्ट दिखाई दे, दिव्य गुण और पवित्रता ये चेहरे और चलन से स्पष्ट हो, या जिसको कहा जाए चेहरे और चलन में वो रूहानियत हो, बोल चाल और भाषा में जो प्राप्ति का अनुभव कराने वाले हो अलौकिक हो, और साथ ही साथ हर कर्म चरित्र बन जाए यानी यादगार बन जाए, या दूसरों को भी प्रेरणा दे सके। आज भी जब बाबा के दादियों के कर्म को कोई याद करता है कि इनके कर्म में क्या क्या बातें थी जो आज भी हमें इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती रहे कि हम भी ऐसा करें, तो उसको कहते हैं दिव्यता संपन्न। और ये दिव्यता को लाने के लिए, प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने के लिए क्या होना चाहिए, तो बाबा ने बहुत स्पष्ट किया था दिव्यता स्वरूप माना फरिश्ता स्वरूप, चैतन्य में चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप यानी लाइट, खाली मस्तक पर लाइट दिखाई दे ऐसा नहीं, लेकिन उसके सारे स्वरूप में वो लाइट का कार्ब जैसे चारों ओर फैला हुआ स्पष्ट दिखाई दे। तो चलते फिरते ऐसे जब लाइट के स्वरूप चलने लगेंगे, वही हर एक को साक्षात्कार कराएंगे। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये बात बार बार कहते हैं कि बच्चे अब फरिश्ता बनो, फरिश्ता बनो, लाइट का साक्षात्कार तभी करा सकते हैं। जितना हमारे ओरा के अंदर, हमारे प्रभा मंडल में चारों ओर वो दिव्य लाइट स्पष्ट दिखाई देने लगे, तभी तो उस बाबा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हम करा सकेंगे। तो इसीलिए अपनी सूरत और सीरत में वो फरिश्तापन के अर्थात हल्कापन, न्यारापन, उपरामता जितनी आती जाएगी उतना दिव्य दर्शनीय मूरत बनते जाएंगे। ये फरिश्ता स्वरूप ही जैसे बैठे होंगे एक स्थान पर, लेकिन दूर भी दूसरे कोने में कोई व्यक्ति होगा उसको भी ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई सफेद वस्त्रधारी आए और हमें ये प्राप्ति का अनुभव करा के गए, हमारे मन को शांत करके गए। हमारा मन इतना विचलित था लेकिन हमारा मन एकदम शांत हो गया, सुकून का अनुभव करके गए, प्रसन्नता का अनुभव करने लगेंगे। बाबा की एक मुरली याद आती है जिसमें बाबा ने कहा जब भक्त प्रसन्नता का अनुभव करे ना, तब वो आपके ऊपर प्रसन्नता के फूल बरसाएंगे, है ना, जैसे भक्ति में फूल फूल बरसाते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता के फूल बरसाएंगे, यानी इतनी दुआएं देंगे इतना आपके खाते को भरपूर करेगा। जो दिव्य दर्शनीय मुहूर्त है, चौथी बात, पांचवी बात ये है कि दिव्य दर्शनीय मुहूर्त वही है जो भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करे, है ना। इसीलिए तो मंदिरों में लोग आज तक भी जाते हैं, कोई भी इच्छा होती है, मनोकामना होती है तो कहाँ जाके रखते हैं, उस देवता के सामने रखते हैं। दूसरे शब्द में कहे तो दिव्य दर्शनीय मुहूर्त माना देवता स्वरूप भले भविष्य में बनेंगे लेकिन अभी वो दिव्यता महसूस हो, तो इसीलिए देवता का पूजन गायन तब होता है जब इच्छाओं को पूर्ण करें, और वो भक्तों की इच्छाओं को कौन पूर्ण कर सकेगा जो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होगा। जिसकी स्वयं ही इच्छाएं हैं अभी भी, वो इच्छा मात्रम अविद्या ही नहीं तो भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकेगा। इसलिए दिव्य दर्शनीय मूर्त माना सर्व भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, और वो पूर्ण कैसे करेंगे, अपनी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति से। अगर अभी तक हमारे में इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो भक्तों की इच्छाएं पूर्ण कभी नहीं होंगी। और वो आत्माएं बिचारी नजर से निहाल होने के लिए, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए, ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए इंतजार में रहेगी, देखते रहेंगे कि कब ये मेरे इष्ट मेरी इच्छा पूर्ण करे। और अगर पूर्ण नहीं कर पाए और अंत आ गया तो वो आत्माएं कितनी दिल शिकस्त हो जाएंगी। इसीलिए बाबा कहे कि अब समय अनुसार बेहद की वैराग्य वृत्ति। कल भी बाबा की मुरली में बहुत अच्छी बात थी कि स्मशानी वैराग तो बहुतों में आता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में गए तो क्या होगा, वैराग ही समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह बाबा कहे कि ब्रह्मा बाबा को भी जब साक्षात्कार हुआ तब वो बेहद का वैराग्य उत्पन्न हुआ, और तब अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित किया, तो घाटे में रहा फायदे में रहा, फायदे में रहा। तो इसी तरह बाबा कहे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति के लिए स्वयं भी बेहद की वैराग्य वृत्ति में होगा तो इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी। बाबा कहे ये साइंस के साधन, ये जो भी साधन है इस दुनिया के, अल्पकाल का सुख जरूर दे सकते हैं, लेकिन सदाकाल का सुख आत्मा को नहीं दे सकता है। और इसीलिए अब ब्राह्मण आत्माओं को तृप्ति, इन चीजों से भी अभी तृप्ति हो गई, उस स्थिति में आ जाना चाहिए। तब बाबा जो यूज करना चाहता है, आपको दर्शन कराना चाहता है, वो आपको यूज कर सकेंगे, क्योंकि निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है। जो बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे उसका भाग्य बहुत बड़ा है। तो सोचो अगर हम भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाए तो भगवान कितने आशीर्वाद के पुष्प हमारे ऊपर बरसाएंगे, और वो भाग्य क्या मिलेगा जो भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। और ये चांस बाबा हर एक को देता है, जो लेना चाहे खुला द्वार है। दूसरे सेवाओं में चांस मिला नहीं मिला, ये हुआ नहीं हुआ, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, या कोई आपका आगे आगे बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनने में कोई आपकी टांग खींच नहीं सकता है, आपको रोक नहीं सकता है। खुली ऑफर है बाबा की, लेकिन उसके लिए ये सारी चीजें तो हो, श्रृंगारी हुई मूर्त हो, दिव्यता संपन्न हो, और इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति या बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, तभी तो बन सकेंगे। तो ये खुली ऑफर भगवान की है कि जो इसमें भगवान की प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएगा उसका भाग्य बहुत बड़ा है, उसका भाग्य कोई छोटा नहीं है। जिस तरह ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने, कि जो भी उस समय साकार की पालना लिए हुए हैं, आज भी थोड़े बहुत रहे हैं, वो आज भी कहते बाबा के सामने जाते थे सब भूल जाता था, हमें किस लिए आए क्या कहने आए वो भी भूल जाता था, और बाबा अगर वहाँ से गुजरता था तो ऐसा लगता था कि एक लाइट का बादल वहाँ से गुजर गया, ये महसूस करते थे। तभी तो इतना बड़ा नंबर वन का भाग्य प्राप्त किया। मम्मा ने भी सूक्ष्म में अपने ऊपर वो मेहनत की, इसी तरह दादियों ने भी अपने ऊपर ये सूक्ष्म मेहनत की, तभी तो भगवान की प्रत्यक्षता के निमित्त बने और कईयों को साक्षात्कार कराने के निमित्त बने। तो इसी तरह अब अंतिम समय के लिए बाबा ने हर एक को ये ऑफर दी है, जो चाहे वो ले सकता है, उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं जो आपको रोक सके। लेकिन बनो तो सही, और जो बनेगा, जो करेगा सो पाएगा। और इसीलिए नंबर वन की माला में, जो नंबर वन ग्रेड संडे की मुरली में भी बाबा ने पिछले दो संडे से ये बात कर कि फर्स्ट ग्रेड में तो जा सकते हैं, फर्स्ट नंबर फिक्स हो गया, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो जा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड में तो अभी तो बहुत सीटें खाली है। तो जो दिव्य दर्शनीय मुहूर्त बनता है वो फर्स्ट ग्रेड में चला जाता है अपने आप, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो सोचो कि कहाँ जाना है, इसलिए पूछा कि खंडित मूर्ति म्यूजियम में जाना है या दर्शनीय मूर्ति बन करके मंदिर में स्थापित होना है, ये हमारे ऊपर है। लेकिन जैसे बाबा ने कहा कि एक एक कर्म उसका यादगार चरित्र बन जाए, तो हम देखें कि हमारे कर्म यादगार है। बेहद के वैराग्य वृत्ति के आधार पर जो भी हम कर्म करेंगे सहजता से, वो सहजता से एक यादगार बन जाएगा, अनेकों के दिल में छाप लग जाएगी। तो ऐसी छाप लगाने वाले हमारे कर्म है, जिसको देखते ही कहे कि हाँ, इसके ये कर्म ने मुझे बहुत जीवन के अंदर प्रभाव डाला है, कि मैं भी प्रभावित होकर के यही इंस्पिरेशन ले, मेरे कर्म भी ऐसे हो। तभी बाबा कहते हैं कि जो दर्शनीय मूर्तियां हैं मंदिरों में, उनके हर कर्म का, हर कर्म का साक्षात्कार होता है। भाई अभी देवताओं को भोग लग रहा है तो भोग का साक्षात्कार, अभी सुबह सुबह उठने का साक्षात्कार के देवताएं उठे हैं, उनकी मूर्तियों को श्रृंगारा जा रहा है, श्रृंगारने के बाद उसका साक्षात्कार, फिर भोग लग रहा है उसका साक्षात्कार, है ना, सोने का साक्षात्कार, हर कर्म क्योंकि यादगार बना। तो इसी तरह बाबा कहे कि आपके कर्म भी यादगार बन जाए, तब वो साक्षात्कार मूर्त या दर्शनीय मूर्त बनेंगे। नजर से निहाल करते हैं वो दर्शनीय मूर्त के, जिसके दृष्टि लेने के लिए भी जब हमारी गुलजार दादी स्टेज पर आती थी, बस दादी की एक दृष्टि मिल जाए, कैसे करते थे सब एकदम, बाकी सब साइड पर बच्चे भी अगर कुछ आवाज करते थे ऐसे से करके रख देते थे, अभी देखो दादी को देखो, दादी को देखो, कहते थे कि नहीं कहते थे, दादी की दृष्टि मिल जाए, ये है दिव्य दर्शनीय मूर्त। तो जैसे साकार में हम सभी ने देखा है, जो लास्ट में भी आए बाबा के पास में, उन्होंने भी दादी का ये स्वरूप, या अभी भी जब अव्यक्त मुरली चलती है तो ये स्वरूप दादी का दिखाई देता है, और अभी भी महसूस होता है कि अभी भी दादी के द्वारा बाबा के वो दृष्टि हमें प्राप्त हो रही है, एकदम शांत चित्त होकर के जैसे दृष्टि लेना शुरू कर देते हैं। दादी यहाँ जहाँ जाती थी तो हर एक को जब दृष्टि, लोग खड़े हो जाते थे, नजर से निहाल होने के लिए खड़े हो जाते, तो ये है कि उनकी दृष्टि में ऐसा क्या था जो लोग खड़े हो जाते थे, उनकी दृष्टि में बस बाबा की याद थी, एक की याद, और उस एक की याद, एक के साथ सर्व संबंध उनके थे, तो इसीलिए कोई भी इंसान सामने होता था उनको न्यारा प्यारा हो करके दृष्टि देते थे, उनको बाबा की याद दिला देते थे। तो ये स्वरूप हमारा भी होना चाहिए। जब मैं बाबा की एक अव्यक्त मुरली पढ़ रही थी तो बाबा कहते हैं कि जब बाबा चक्कर लगाने जाता है भक्तों के पास तो भक्त पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, दया करो, हे मेरे इष्ट मुझ पर रहम करो। तो बाबा कहते हैं बाबा से ये दृश्य जब बाबा देखता है तो बाबा को बहुत तरस आता है। कल परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा बाबा को किन बच्चों पर तरस आता है, कहते ना। तो बाबा को तरस आता है उन भक्तों के जब चिल्लाते हैं करते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे आप उनकी मनोकामना को पूर्ण करो। तो किसी बच्चे ने कहा बाबा ऐसे समय पर आप ही पूर्ण कर दो वो बेचारे भक्तों की मनोकामना, वो तरस चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, दुख में है, दर्द में है, तो उनकी मनोकामना आप ही पूरी कर दो ना। तो बाबा ने क्या कहा होगा, चिट्ठियां चल रही थी वो उस मुरली के अंदर बाबा की और बच्चों के साथ। तो बाबा बच्चों की बात सुनाते थे कि कई बच्चे सोचते हैं कि बाबा ही पूरी कर दे उनकी मनोकामना। तो बाबा ने क्या कहा होगा, मैं तो कर सकता लेकिन ड्रामा में ये पार्ट बच्चों का है, बच्चों को अब दुख हरता सुख करता बनना है, बच्चों को अब सुखदेव बनना है। सुखदाता के बच्चे हैं तो सुखदेव बच्चों को बनना है। बाबा करना चाहे तो भी बाबा नहीं कर सकता है क्योंकि ये भाग्य बाबा बच्चों को देना चाहता है। क्योंकि जब ये भाग्य आप लेंगे तब आपको आंतरिक जो इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आंतरिक संतुष्टि का अनुभव जो होगा वो बाबा को तो है ही है ना। और बाबा को जिसका पूरा करना है वो तो पार्ट बाबा बजा ही रहा है, लेकिन बाबा को जिन बच्चों का भाग्य बनाना है, ड्रामा को भी जिन बच्चों का भाग्य बनाना है, तो वो बच्चों को ही करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को तरस आता है कि अभी तक मेरे बच्चे तैयार नहीं हुए हैं कि उन भक्तों का दुख हरे, उनको सुख दे और सुख देते हुए उनको तृप्त करे। बाबा ने कहा ये कल्प वृक्ष के पत्ते जो है ना, ये आत्मा रूपी पत्ते जो है ये सूख गए हैं, मुरझा गए हैं। अब मुरझा गए हैं, सूख गए हैं, तो उसके लिए उनको प्रकाश मिले, उनको शक्ति मिले, तो उसके लिए आपको स्वयं बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। तब हर पत्ते को प्रकाश मिलेगी, हर पत्ते को हरा भरा कर सकेंगे वापस, जो सूख गए हैं, मुरझा गए, इतने दुख दर्द में मुरझा गए, तो उनको ताजा करना है, उनको वो शक्ति प्रदान करनी है। तो उसके लिए जितना स्वयं बीज स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उनको वो प्रकाश, वो शक्ति पहुंचा सकेंगे और एक एक पत्ते को पुनः हरा भरा कर सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे ये भाग्य बाबा बच्चों का बनाना चाहता है। बाबा कोई बना तो क्या सतयुग के अंदर खाली एक बाबा ही राज करेंगे और कोई होंगे नहीं साथी। तो इसीलिए बाबा चाहता है और ड्रामा भी चाहता है कि ये काम बच्चों का है जो बच्चों को ही करना है। तो इसलिए अब समय अनुसार ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसी दिव्यता को अपने जीवन के अंदर, अपने कर्मों के अंदर, अपने बोल चाल में ले आना है जो हर कोई को सहजता से साक्षात्कार हो और साक्षात्कार सहजता से करा सके कि हाँ हमारे इष्ट आ गए। बाबा कहे जब ये प्रत्यक्षता का झंडा हर एक दिल पर लहराएगा कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, तब ये कार्य संपन्न होगा, तो ऐसा संपन्नता के आधार से ये दिव्य दर्शनीय मूर्त बन करके हर एक को साक्षात्कार कराना है, ताकि परमात्मा का प्रत्यक्षता का झंडा हर एक दिल पर लहराने लगे। तो कब तक करेंगे? इसीलिए बाबा कई बार पूछते हैं, और हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी ने भी शिवरात्रि का ही दिन चुना था संपूर्णता को प्राप्त करने का, है ना, कि हर एक दिल पर कपड़े का झंडा तो हर साल हम लहराते हैं, लेकिन बाबा कहे ये झंडा दिल पर, प्रत्यक्षता का झंडा दिल पर कब लहराएगा? जब हर आत्मा ये कहने लगे मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, हाँ, तो वो वाइब्रेशन सारे विश्व के अंदर जरूर पहुंचना चाहिए। तभी आप सबको साक्षात्कार कराते हुए उस दिव्य अनुभव से संपन्न कर सकेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।
भारत की यही पहचान, देवता होगा। धरा